नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा, मतदान में इस्तेमाल ईवीएम स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित। आयोग ने कहा, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों से संबंधित आदेश में असहमति सार्वजनिक नहीं की जाएगी। संभावित चुनाव परिणामों पर रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए नेताओं की नई दिल्ली में बैठक। अरुणाचल प्रदेश में घात लगाकर किए गए हमले में एक विधायक और अन्य 10 लोग की मौत। और 12 भारतीय महिला खिलाड़ी गुवाहाटी में इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा है कि मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आयोग ने कहा कि मीडिया में दिखाए गए दृश्य मतदान के दौरान इस्तेमाल की गई किसी भी ईवीएम से संबंध नहीं रखते। स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम के स्थान पर कथित रूप से अन्य ईवीएम को रखने की कोशिश की शिकायत के बाद यह स्पष्टीकरण आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें और आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। आयोग ने कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में लाया जाता है, जिसे उम्मीदवारों और प्रेक्षकों की उपस्थिति में दोहरे ताले के साथ सील किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है तथा मतगणना होने तक दोनों ही सीसीटीवी की निगरानी में रहती हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्ट्रांग रूम का 24 घंटे पहरा देते हैं और निगरानी के लिए उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। मतगणना के दिन वीडियोग्राफी के अंतर्गत उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाता है। निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों में असहमति और अल्पमत वाले दृष्टिकोण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आयोग की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा, सुशील चंद्र उपस्थित थे। आयोग ने कहा कि असहमति संबंधित टिप्पणियां और अल्पमत वाला दृष्टिकोण बैठक के रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहेगा, जैसा कि अब तक होता है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले अर्ध न्यायिक किस्म के नहीं होते, इसलिए उन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके सहयोगी आयुक्तों के हस्ताक्षर नहीं होते, इसलिए असहमति के आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। हाल ही में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आयोग की व्यवस्था से लवासा ने अपने आप को ये कहते हुए अलग कर लिया था कि उनकी असहमति को निर्वाचन आयोग के आदेश का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को एक बयान में आयोग ने कहा था कि अतीत में कई बार ऐसा हुआ है जब आयुक्तों के दृष्टिकोण में व्यापक मतभेद देखे गए हैं। आयोग के तीनों सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनके विचार एक दूसरे के प्रतिलिपि होंगे। 22 विपक्षी पार्टियों के शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती रैंडम तरीके से चुने गए 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन के बाद की जानी चाहिए, न कि मतगणना के बाद। इन नेताओं ने मांग की कि अगर वीवीपैट पर्चियों की जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उस विधानसभा खंड के सभी मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों ने वीवीपैट पर्चियों की संख्या का मिलान ईवीएम आंकड़ों से करने का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
इलेक्शन कमीशन ने निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिनी जाएगी। हम लोगों ने कहा भाई, इस राजनीतिक दलों में नहीं, पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहे। दूसरा, अगर उन 5 पोलिंग स्टेशन पे डिस्क्रिमिनेंसी पाई गई तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए।
भाजपा ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। पार्टी ने कहा है कि अगर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लौटने के लिए वोट दिया है तो विपक्ष नम्रतापूर्वक अपनी हार स्वीकार कर ले। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,
इसी ईवीएम से जब कांग्रेस पार्टी जीते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब ममता जी बने दो बार मुख्यमंत्री, अमरिंदर सिंह बने पंजाब के मुख्यमंत्री तो ईवीएम ठीक है। जब वो जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर हमारे जीतने का अनुमान हो तो ईवीएम गड़बड़ है।
उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान ईवीएम में दर्ज वोटों का शत प्रतिशत मिलान मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। चेन्नई स्थित टेक्नोक्रेट समूह की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बड़ी पीठ ने इस मामले की पहले ही सुनवाई कर आदेश दे दिया है। पीठ ने कहा कि वो प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा।
कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ।
मेरा आधार, मेरी पहचान।
राजनीति के मैदान सबसे बड़े घमासान के लिए जनमत की माटी से होगा राज तिलक। DD न्यूज पर देखिए सबसे बड़े रिपोर्टर्स नेटवर्क के साथ देश के हर मतगणना केंद्र से चुनाव परिणाम की सबसे सटीक और निष्पक्ष कवरेज। सिर्फ DD न्यूज पर आपको मिलेंगे स्पष्ट रुझान और सही नतीजे विश्वसनीय विश्लेषण के साथ। जनादेश 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज सिर्फ DD न्यूज पर।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के नेता इस समय नई दिल्ली में रात्रि भोज पर मिल रहे हैं। बैठक के दौरान वे लोग चुनाव के संभावित परिणामों पर रणनीति तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री तथा जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान और ऑल इंडिया अन्ना DMK नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री EK पलनीसामी बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर बादल और रामविलास पासवान समेत अनेक मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि NDA केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आज पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां हार की आशंका से EVM पर आधारहीन आरोप लगा रही हैं। कर्नाटक में इस बार लोकसभा चुनाव में 5,10,00,000 मतदाताओं में से 4,03,000 दिव्यांग मतदाता थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि वे बिना किसी परेशानी के वोट डाल सकें।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 4,03,000 दिव्यांग जन थे। इनमें से सबसे अधिक तुमकुर जिले में 30,478 और बेंगलुरु से 10,995 दिव्यांग मतदाता थे। 11,951 दिव्यांग मतदाताओं ने मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन 1950 के जरिए व्हीलचेयर बुक की और उन्हें आने जाने की सुविधा दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक जिले में दिव्यांग जनों की मदद के लिए एक अधिकारी तैनात किया था। कर्नाटक में ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें आने जाने की सुविधा दी गई। बेंगलुरु से आरमूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
जम्मू कश्मीर में कश्मीर क्षेत्र में 3 संसदीय सीटों के लिए 5 चरणों में वोट डाले गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मध्य और दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में मतदान के दिन पत्थरबाजी की मामूली घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा।
अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर घाटी में आम वैब पुलिस और माइक्रो पर्यवेक्षकों की देखरेख में मतदान आयोजित किया गया। कश्मीर घाटी में 3 संसदीय चुनावी क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों की बारी तैनाती सुनिश्चित की गई थी। कई महिला मतदान केंद्र और मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। 39 उम्मीदवारों का बागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद है, जबकि मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस पार्टी के बीच है। चुनाव आयोग ने राज्य में 90 काउंटिंग हॉल के साथ 10 मतगणना केंद्र स्थापित किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से तारिक राठौर।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों पर समाचार सेवा प्रभाग का विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम उत्तर से लेकर दक्षिण तक
आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना।
दिवाकर, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
हैदराबाद से लक्ष्मी।
पूर्वोत्तर से पश्चिम तक।
आकाशवाणी समाचार के लिए ईटानगर से मैं राकेश डोले।
पटना से जेके लाल।
अहमदाबाद से योगेश पंड्या।
देश भर से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे विश्वसनीय और ताज़ा हाल, विशेषज्ञों द्वारा चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल पर।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में आज तीसरे पहर बंदूकधारियों के घात लगाकर किए गए हमले में नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता और खोंसा के विधायक तिराब अभो सहित 11 लोग मारे गए। राज्य के पुलिस महानिदेशक SBK सिंह ने बताया कि 12 मील इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों के गुट ने विधायक के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। मृतकों में विधायक के पुत्र और उनके चुनाव एजेंट सहित 2 निजी सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विधायक तिरांग अभो और अन्य लोगों के निर्मम हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पूर्वोत्तर में शांति और सामान्य स्थिति को बिगाड़ने का घिनौना प्रयास है। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। PSLV C-46 के प्रक्षेपण के लिए 24 घंटे की उलटी गिनती आज सुबह 4:30 बजे प्रारंभ हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कल सुबह 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से धरती का राडार चित्र भेजने वाले उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। एक रिपोर्ट।
श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में बनी दर्शक दीर्घा से लोग पहली बार प्रक्षेपण देख पाएंगे। ये इस साल छोड़े जाने वाला तीसरा उपग्रह है जिसमें कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे धरती से 555 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। छोड़े जाने के करीब 16 मिनट बाद उपग्रह प्रक्षेपण यान से अलग हो जाएगा। इस उपग्रह का वजन 615 किलोग्राम है। इसमें एक्स बैंड राडार लगा हुआ है। उपग्रह द्वारा भेजे गए डेटा का उपयोग कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में मदद के लिए किया जाएगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की मंदी से 383 अंक लुढ़ककर 38,970 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 119 अंकों का नुकसान दर्ज करता हुआ 11,709 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 69.72 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।
बंद पड़े विमानन कंपनी जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। वे अपने लंबित वेतन के भुगतान और कंपनी के फिर से संचालन की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों के एक समूह ने मंत्रालय में संयुक्त सचिव SK मिश्र से भेंट की। मंत्रालय ने कर्मचारियों से कहा कि सरकार भी जेट एयरवेज का संचालन फिर से शुरू करने का प्रयास कर रही है। असम में इंडिया ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 14 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैरीकॉम के अलावा कलेवाणी, जमुना बोरो, मंजुरानी, मोनिका, ज्योति और मीना कुमारी ने भी जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चीन में सुधीरमन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत को अपने शुरूआती मैच में ही हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया ने भारत को 3-2 से हरा दिया। इस हार से भारत की नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदों को कुछ झटका लगा है। श्रीलंका में विपक्षी दल जनता विमुक्ति पेरुमना ने ईस्टर संडे के हमले को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। हमले में 45 विदेशी नागरिकों सहित 250 से अधिक लोग मारे गए थे। इस बीच हमले के 1 महीना पूरे होने पर आज देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा, मतदान में इस्तेमाल EVM स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित। आयोग ने कहा, आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों से संबंधित आदेश में असहमति सार्वजनिक नहीं की जाएगी। संभावित चुनाव परिणामों पर रणनीति तैयार करने के लिए NDA नेताओं की नई दिल्ली में बैठक। अरुणाचल प्रदेश में घात लगाकर किए गए हमले में विधायक और अन्य 10 लोगों की मौत। और 14 भारतीय महिला खिलाड़ी गुवाहाटी में इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।